السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، آمين. آج ہم سورة البقرة آیت نمبر 84 سے 91 تک کریں گے. دیکھتے ہیں پہلے لفظی ترجمہ. و اور اذ جب اخذ لیا، اخذ کرنا ہوتا ہے، اردو میں بھی بولتے ہیں اخذ کرنا، لینا. نہ ہم نے میثاق پختہ عہد، کم تم سے، لا نہیں، تسفیکونا، تسفیکونا جیسے صفاقی ہوتا ہے، خون بہانا، تسفیکونا تم بہاؤ گے، دماءکم دم سے، دم کی جمع دماء، خون، کم تمہارے یعنی اپنے، ولا تخرجونا اور تم نکالو گے، انفسکم اپنی جانوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، دار کی جمع دیار، جیسے ہم کہتے ہیں دار الاخرہ، آخرت کا گھر. ثم پھر اقرار تم، اقرار کیا تم نے، و اور انتم تم تشہدون، تم گواہ ہی دیتے ہو. ثم پھر انتم تم ہا اولائی وہ لوگ ہو، تقتلونا تم قتل کر ڈالتے ہو، انفسکم اپنے لوگوں کو، اپنی جانوں کو کہہ سکتے، وتخرجونا اور تم نکال دیتے ہو، فریقاً ایک فریق کو، من کم من سے، کم تم، تم میں سے، من دیار، دیار سے دار کی جمع، گھروں سے، ہم ان کے، تظاہرونا تم ظہر کہتے پیٹھ کو، تو کسی کی اوپر غالب آ جانا. آلہ جب آتا ہے آگے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر غالب آ جانا، ورنہ تو پشت پناہی ہوتا ہے، بیک، کسی کی سپورٹ کرنا. تم چڑھائی کرتے ہو، آلہ آ گیا نا، اس لیے تم چڑھائی کرتے ہو، تم غلبہ پاتے ہو، علیہم ان پر، بالاثم، اثم گناہ کو کہتے ہیں، ساتھ گناہ کے، والعدوان اور زیادتی کے، وَإِنْ اور اگر، يَأْتُوكُمْ وہ آ جائیں، کم تمہارے پاس، اسارہ اسیر کی جمع، اسیر ہوتا ہے قیدی، اور ہم اردو میں بھی بولتے ہیں اسیر. وہ کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے زلف کا اسیر ہو گیا، تو قیدی کے لیے آتا ہے نا. تُفَادُو فدیے سے، تم فدیہ لیتے ہو، ہم ان سے، وہ حالانکہ ہوا وہ محرم، حرام کیا گیا تھا، علیکم تم پر، اخراجہم، اخراج خارج ہونے سے، نکالنا، ایک ہوتا ہے نا خود نکلنا، ایک ہے اخراج نکالنا، ہم ان کو، آ کیا، فا پھر، تؤمنونا تم ایمان رکھتے ہو، ببعض الکتاب بی ساتھ، بعض کے، الکتاب کے، و تکفرون اور تم کفر کرتے ہو، ببعض ساتھ بعد کے، فما تو نہیں، کیونکہ آگے اللہ ہے، جزاؤ جزا ہوگی، من جو کوئی، یفعلو کرتا ہے، ذالک یہ، منکم تم میں سے، اللہ مگر، خزیون رسوائی، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، و یوم القیامت اور قیامت کے دن، یردونا رد ہونا، لٹنا لٹانا، ریجیکٹ کرنا، یردونا وہ لوٹائے جائیں گے، الی طرف اشد العذاب شدید عذاب کے، وما اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ، بغافل غافل، عما عن اور ما مل گئے، تو عن سے ما جو، اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، اولئک یہی لوگ، الذین وہ ہیں، اشتراب الحیات الدنیا، اشترا پہلے بھی آیا تھا، اشترا کہتے ہیں بائنگ اینڈ سیلنگ کو، خرید و فروخت، तो यहाँ माना खरीदने का, जिन्होंने खरीद ली। अल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी, बिलाखिरा बदले आखिरत के, बी का माना यहाँ पे बदले का। बी के बहुत सारे माने हैं इसीलिए डिफरेंट आते हैं, कहीं साथ का, कहीं आप देखें ये बवजा का आता है, कहीं बदले का आता है। फला तो नहीं, युखफ्फफु तख़फीफ करना, हल्का किया जाएगा, अनहुम उनसे, अल अदाब अजाब, वला हुम और ना वो, युन सरून वो मदद किए जाएंगे, इसलिए क्योंकि ये मजहूल है। वलकद और अलबत्ता तहकीक यानी यकीनन, ल भी ताकीद का और कद भी, आ तई ना दी हमने, अतायाती होता है देना, ना हमने मूसा, मूसा अलैहि सलाम को, अल किताब किताब, वकफ़ीना, और कफ़ा कहते हैं पीछे भेजने को, मिम बाद ही उसके बाद, उसके यानी पीछे, बिर रसुल। अच्छा, कफ़ीना का यहाँ पे फिर माना होगा पे दर पे भेजना, एक के बाद एक भेजना, भेजे हमने कफ़ीना, भेजे हमने पे दर पे, मिम बाद ही इसके बाद, बिर रसुल, रसूल, व आतेना और दी हमने, ईसा बिन मरियम। अब देखिए अता याती आने के लिए भी आता है, लेकिन जाहिर है यहाँ पे कोई चीज़ देने की बात आ रही है तो वो आने का माना नहीं बनेगा। ईसा इब्ने मरियम को, ईसा बेटे मरियम, अलबैनात रोशन निशानी, मुबैन कहते हैं जो बिल्कुल वाजे हो, व अय्यदना और ताईद की हमने, ना हमने हु उसकी, भी रूहिल कुदुस, सात रूहिल कुदुस के, कुदुस पाक। आ क्या, फा भला, कुल्लमा जब कभी, जाअकुम, तो इसको तीन में डिवाइड कर लें, जाअकुम लाया, क्योंकि जाआ आना नहीं होगा यहाँ पे, लाना होगा क्योंकि आगे बी है, जाआ लाया कुम तुम्हारे पास रसूल, उनको ही रसूल, बीमा साथ उसके, जो ला नहीं, तहवा हवा से, ख्वाहिश नफ्स को कहते हैं, आगे भी आप पढ़ेंगे तो इसको एक दफ़ा याद कर लें, हवा ख्वाहिश नफ्स को कहते हैं, यानी जित इंसान का जो जी चाहता है, और तहवा यानी चाहते थे, अनफुसुकुम तुम्हारे नफ्स, तुम्हारे दिल, इस तकबर तुम, तकबर किया तुमने, फरीकन ए तो एक ग्रुफा तो फरीक, एक फरीक को, कज़ब तुमने झुटला दिया, तकजीब कर दी, व फरीकन और एक ग्रोह को, तकतुलून तुम कत्ल करते रहे, वकालू तुम कत्ल करते हो नहीं, करते रहे, ये इंशाल्लाह हम तफसीर में देखेंगे। काला का की जमा कालू, उन्होंने कहा, कुलूबुना दिल हमारे, गुल्फ गिलाफ में है, यानी बल बल्कि, लानाहुमुल्लाह लानत की है अल्लाह ने, भी कुफ्रिहिम बी बवजा, यहाँ पे बी का माना बवजा का, बिकॉज ऑफ कुफ्रिहिम उनके कुफर के, फ़कलीलन तो कितना, कलील थोड़ा, मा जो युमिनून वो ईमान लाते, वलम्मा और जब, लम्मा जब भी आएगा, ये कलमा जिसको कहते हैं शर्तिया, तो जब का माना आएगा, जाअ हम कि जब जब ये हुआ तो ये हुआ, ऐसे होता है ना, जाअ हम आ गई उनके पास, किताब मिन अंदिल्ला अल्लाह के पास से, मुसद्दिकुन जो तस्दीक करने वाली थी, लम्मा वास्ते उसके, जो माँ हम पास है उनके, वकानू ओ हालांकि, यहाँ पे वा का माना हालांकि का करें तो बेहतर है, कानू थे वो, मिन कबलू इससे पहले, यस्तफ्तिहूना फतहा, फतह भी इसी से होता है, विक्ट्री भी होता है, लेकिन याद रखिए जब लफ्ज के शुरू में सीन और ता आ जाए तो मांगने का माना होता है या तलब करने का माना होता है, तो बाबे इस्तेफाल है उसकी, ये सिफत होती है, तो आप बस ये याद रखें, सीन और ता आ गया तो शुरू में, यस्तफते होना तो फतह की दुआएं मांगते थे, आला आला लदीना कफर ऊपर काफरों के, तो काफरों के ऊपर का मतलब उनके खिलाफ, आला खिलाफ, अल्लदीना उन लोगों के, कफरू जिन्होंने कुफर किया, फलम्मा जाअहुम तो जब आ गया उनके पास, मा आराफू जो उन्होंने, आराफू जैसे आप कहते तारुफ पहचान, तो आराफू उन्होंने पहचान लिया, कफरू उन्होंने कुफर किया, भी ही साथ इसके, फलानतुल्लाह तो अल्लाह की लानत हो, अलल कैफिरीन काफरों पर,
बी समा, बी समा को बेसा का जो ऑलवेज आप बेसमा ऐसे ही आएगा, बेसा बुराई के लिए कहते हैं। तो अब बेसमा इस फॉर्म में जब आएगा तो कितना बुरा है, बहुत शदीद कराहत के लिए आता है, बहुत ज्यादा बुरा है, यानी कितना बुरा है ये चीज। इश्तारो बेच डाला उन्होंने, ओ अलिफ है एंड में तो जमा है, बी ही बदले उसके, अनफुसाहुम अपने नफ्सों को, अन ये के यक फुरू उन्होंने कुफर किया, बीमा साथ उसके जो अनजल्ला अल्लाह ने नाजिल किया, बगयन जिद में, अन ये के युनजीलो युनजीला नाजिल करता है अल्लाह ताला, मिन फदली ही अपने फजल से, आला ऊपर मन जिसके यशा वो चाहता है, शाह चाहना होता है ना, इसलिए इंशाअल्लाह माशाअल्लाह हम कहते हैं, मिन इबादी ही अपने बंदों से ही अपने, फबाउ तो वो लौटे, बा लौटना वो लौटे, बी साथ, गदबिन अला गदब गजब के ऊपर गजब के, वा और ली लिए काफरों के, आदाब है मुहीन अहानत वाला रुस्वाकुन, वा ईदा और जब, कीला कहा जाता है, एक होता है कौला वो कहता है, एक है कीला कहा जाता है, अब कहने वाले का नहीं यहाँ पे पता चलता, लहुम उनको, आमीनू ईमान ले आओ, बीमा साथ उसके जो अनजल अल्लाह ने नाजिल किया, कालू वो कहते हैं, नु मीनू हम ईमान लाएंगे, बीमा साथ उसके जो उन जिला नाजिल किया गया, अलैना हम पर, व यकफुरुना और वो कुफर करते हैं, बीमा साथ उसके जो वराहू उसके वरा है इलावा है, वाहू अल हकू हालांकि वो हक है, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला है, लीमा वास्ते उसके जो माहू उनके पास है, कुल कह दीजिए, फलीमा फा तो, लीमा क्यों, तकतुलूना तुम कत्ल करते रहे हो, अम्बिया अल्लाह अल्लाह के नबियों को, मिन कबल इससे पहले, इन अगर कुन तुम हो तुम मुमिनीन ईमान लाने वाले। यहाँ तक का आज का हमारा सबक है, देखते हैं हम इसकी तफसीर। आपने इससे पहले देखा है बनी इसराइल की बात चल रही है और इसके अंदर उनकी खराबियों को बताया जा रहा है और उनके अकायद के खिलाफ दलाइल दिए जा रहे हैं, इसको कहते हैं मुखासमा, क्या कहते हैं मुखासमा, यानी खसाम, यानी डिबेट जिसको कहेंगे, या दलाइल जिसको कहेंगे, कि जो इनके अकीदा था जो इन्होंने बना रखा था उसके खिलाफ अकायद। तो ये हमें बताने का क्या मकसद है कि हम इससे क्या करेंगे? असल में बात यह है कि जो बनी इसराइल ने किया उसको हमें दिखाया जा रहा है, ये देखो तुमने ऐसा नहीं करना, इसलिए कि हमें पता चलता है कि जब पिछली कौमों ने इस तरह के रवैये रखे और उनके साथ ये सब कुछ हुआ, जैसे अल्लाह ताला की लानत है या और उनके ऊपर सजाएं आईं, तो उनके इन आमाल की वजह से आईं जो उन्होंने किए। अब ये आईना उम्मत मुस्लिमा को दिखाया जा रहा है, क्योंकि बनी इसराइल पहले चुनी हुई कौम थी और उनके बाद अल्लाह ताला ने ये मनसब उनसे ले लिया उनकी बिगाड़ की वजह से, और उम्मत मुस्लिमा को फजीलत दे दी जहानों के ऊपर कि अब उम्मत मुस्लिमा है जो उनकी जगह रिप्लेस करती गई। ठीक है, अब ये है कि उम्मत मुस्लिमा को दिखाया जा रहा है, देखो तुमने ऐसा नहीं करना, क्या वजह है? जैसे एक माँ बच्चों को कहे कि भाई बड़े भाई की तरह नहीं करना तुमने, देखो तुम्हारे बड़े भाई ने क्या किया और देखो उसके कैसे फेल हुआ, तो ये समझ लें बड़े भाई हैं, इनके पास पहले शरीयत आई, नबी आए, इन्होंने उनके साथ क्या रवैया रखा और अपनी शरीयत के साथ और दीन के साथ क्या मामला किया, अब तुमने ऐसा नहीं करना। इनके वाकयात हमारे लिए एक इबरत है, और ये कि अल्लाह ताला को कौमों को जिनको चुनता है अल्लाह ताला, उनसे क्या चीज़ अल्लाह ताला नहीं चाहता कि वो किस में पड़े, और अक्सर ऐसा हो जाता है कि लोग इन्हीं चीज़ों में पड़ जाते हैं फिर जो यहाँ पे बताई गई हैं।
लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई है कि ये गुमराहियां मुसलमानों में आएंगी, अक्सरियत इसके अंदर ही मुब्तला हो जाएंगे। फिर अगेन इतनी बातें बताने के बावजूद, क्योंकि हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम भी उन लोगों की पैरवी करोगे जो तुमसे पहले गुजरेगे, हाथ के साथ हाथ और बालिश के साथ बालिश, यानी बिल्कुल उनके फुटस्टेप्स पे चलोगे, यहां तक कि वो गो के बिल में भी घुसेंगे तो तुम भी उसमें घुसोगे। अल्लाह अकबर। तो सहाबा ने पूछा या रसूल्ला क्या आपका इशारा यहूदो नसारा की तरफ है? आपने फरमाया और कौन? दूसरी हदीस में है कि अगर उनमें से कोई बदबख्त ऐसा होगा जिसने अपनी माँ के साथ जिना किया होगा तो तुम्हारे में से भी कोई ऐसा उठेगा जो यही काम करेगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। लेकिन अल्लाह ताला ने वॉर्न किया इससे कि ये काम नहीं करने। और तो एज उम्मा हमें इसको देखना है कि कौन सी चीजें वो किया करते थे। तो मैंने आपको बताया ना कि कुरान करीम में इनके अकायद के खिलाफ दलायल दिए गए हैं, और चार किस्म के मुखासमे कुरान पाक में आप ज्यादातर देखेंगे। एक मुखासमा यहूद के साथ, एक ईसाइयों के साथ भी आप देखेंगे आगे चल के, फिर मुशरिकीन के साथ और मुनाफिकीन के साथ। तो ये मुखासमे यानी ये इनके अकायद के खिलाफ दलायल यहाँ पे दिए गए, इनकी खराबियों को हाईलाइट इसलिए नहीं किया गया कि हम पढ़ पढ़ के सोचें देखो कितने बुरे थे ना इन्होंने ऐसा किया, ये तो थे ही ऐसे, इसलिए कि तुम अपने आप को इससे बाज रखना। ये वो चीजें हैं जिसने उनको डबो दिया और वो लानत जदा हो गए, और अल्लाह ताला की नाराजगी उनके ऊपर हुई, उसका गजब उनके ऊपर हुआ। ये ना हो कि तुम भी इसमें मुब्तला हो जाओ। तो देखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत नंबर 74। वा इज अखदना, और जब लिया हमने मीसाक़कुम, मीसाक पुख्ता वादा तुमसे, ये किनको कहा जा रहा है? यहूदियों को जो बनी इसराइल थे, कि अल्लाह ताला ने इनसे पक्का वादा लिया। पीछे भी आपने पढ़ा ना वा इज अखदना मीसा का बनी इसराइल, तो अब यहीं यहाँ पे भी यही उन्हीं से वादे की बात आ रही है। पहले कौन से वादे थे? तौहीद के ऊपर कायम रहना है, वालदेन के साथ एहसान, रिश्तेदारों के साथ, यतामा मसाकीन के साथ एहसान, और देखो लोगों के साथ अच्छी तरह बात करना, नमाज कायम करना, ज़कात देना। लेकिन तुम में से बहुत ही कम थे जो इसके ऊपर कायम रहे। अब क्या है, आगे और भी इनसे वादा लिया गया था। क्या? नंबर वन, ला तस्फिकूना दिमाग करूं, तुम खून नहीं बहाओगे अपने। अपना खून बहाने का मतलब क्या है? इसके दो माने, एक माना तो ये कि खुद का खून ना बहाना, कत्ल ना करना खुद को, यानी खुदकुशी हराम है, इनमें भी हराम थी। नंबर टू, अपने भाइयों का कत्ल ना करना, क्योंकि अपनी साथ वाले दूसरे यहूदी का कत्ल भी ऐसे ही है जैसे तुम अपना कत्ल कर रहे हो। कि कोई भी उम्मत अगर उसके अंदर ऐसे हो जाए कि आपस में ही वो एक दूसरे का खून बहाना शुरू कर दे, तो फिर वो उम्मत कैसे कभी एक हो सकती है, और वो उम्मत कैसे कभी कोई दुनिया में काम कर सकती है जो एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े हो जाए। उन्होंने दुनिया में क्या रिफॉर्म्स लाने हैं, या क्या दुनिया में भलाई का काम करेंगे जो आपस में ही लड़ते रहेंगे? क्या वला तुखरिजू ना अनफुसकुम मिन दियारिकुम, और ना तुम निकालोगे अपनी जानों को अपने घरों से। यानी एक मतलब क्या, इसमें भी दो मतलब बनते हैं, यानी तुम अपने आप को घरों से ना निकाल देना, पहला अपने आप का ही ले। तो यानी इंसान बाज दफा अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के घरों से निकल के ये सोचता है कि मैं बड़ा नेकी का काम कर रहा हूँ, जंगलों में जाके आबाद हो गए, बस एक तरफ अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, और हम तो बड़े नेक हो गए। आपको याद होगी वो हदीस के तीन लोगों ने जो आके कहा था कि हम में एक ने कहा मैं तो कभी ऐसा नहीं कहूंगा रोजा छोड़ू, एक ने कहा मैं तो कभी रात को सोऊंगा नहीं, एक ने कहा मैं कभी शादी नहीं करूंगा। तो आपसे इस्लाम ने फरमाया था ये मेरी सुन्नत नहीं है, मैंने इस्लाम के अंदर ये नहीं है कि कोई घरों से छोड़ के जंगलों में जाके आबाद हो जाए, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं था, इसलिए उम्मत मुस्लिमा के लिए भी ये नहीं है। खुद को तकलीफ देना शरीयत ने हराम करार दिया है, ऐसी तकलीफों में खुद को डाल देना और सोचना कि ये दीन है, ठीक है? तो एक तो ये हो गया। दूसरा असल माना इसमें क्या है, अनफुसकुम के मतलब अपने भाई बंदों को, अपने यानी उम्मत के लोगों को उनके घरों से ना निकालना, ये भी तुमसे वादा लिया गया था। तुम अकरार तुम फिर तुमने इसका इकरार किया, वह अंतुम तशादून, और तुम गवाह हो, इस बात के गवाह हो कि तुमने इसका इकरार किया था अल्लाह ताला से, तुम्हें पता है इस चीज का, खुद इस पर गवाह हो कि हमने ये वादा किया हुआ है, ये जानते थे, कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। बाज दफा एक खामोश अहद भी होता है ना, चाहे साफ तौर पे ना भी इंसान करे, मगर एक खामोश इकरार भी समझा जाता है। मगर यहां पर तो कोई बात शुबे वाली थी नहीं, इसलिए कि ये इकरार बहुत क्लियर था, तुमने ये इकरार किया, तुम्हारे नबी ने आके तुम्हें बताया ये और तुमसे ये इकरार लिया है। अब इनसे ना चार वादे लिए गए थे। एक वादा ये था कि एक दूसरे को कभी कत्ल नहीं करना, और एक दूसरे का खून हराम है। नंबर टू, दूसरे को घर से नहीं निकालना। नंबर थ्री, एक दूसरे के खिलाफ किसी की मदद नहीं करनी। नंबर फोर, अगर अपना कोई भाई बंद कैद हो जाए तो इसको फिदिया दे के छुड़ाना है, कोई किसी ने उसको कैद कर लिया तो फिदिया दो। फिर इन्होंने क्या किया, इस ये देखिए अल्लाह ताला ने ये इकरार लिए इनसे, इन्होंने वादे किए, लेकिन वादा तोड़ना इनकी तबीयत के अंदर ही था। तो आगे क्या आता है, सुम अंतुम हा उलाई, फिर तुम वो लोगो तकतलून अनफुसकुम, इसके बावजूद कि तुमने अल्लाह ताला से अहद किया था, तुम अपने नफ्सों को कत्ल करते हो, अपने भाई बंधुओं को कत्ल करते हो। असल में कत्ल कैसे होता था, यहूदी यहूदी को कैसे कत्ल कर रहा था, क्योंकि एक इनकी हिस्ट्री देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले, मदीना आने से पहले, कबाइल एक दूसरे के साथ अलायंस करते थे, जैसे दुनिया में आज भी होता है, कई मुल्कों ने एक दूसरे के साथ अलायंस किया हुआ है, वो एक दूसरे की मदद करती हैं, एक के ऊपर हमला दूसरे के ऊपर हमला समझा जाता है, इस तरह से वो भी ऐसे करते थे कि अलायंस करते थे। तो औस और खजरज आपस के अंदर बहुत लड़ते थे, और उनकी लड़ाइयों के अंदर औस के जो अलायंस होते थे वो भी खजरज और उसके अलायंस के साथ लड़ते थे। औस के साथ कौन था, बनू कुरैजा, तीन कबाइल थे ना यहूद के मदीना में, बनू कुरैजा, बनू नज़ीर और बनू कैनका, ठीक है। कुरैजा जोए के साथ है और नज़ीर जो है वो दौद के साथ है, ठीक है। अब औस के साथ बनू कुरैजा था और खजरज के साथ बनू नज़ीर और बनू कैनका थे। अब जब औस और खजरज लड़ते थे, आपको पता है इनकी तो जंगे बहुत लंबी लंबी हुई, जब ये आपस में लड़ते थे तो फिर जाहिर है ये कबाइल भी लड़ते थे, यहूदी भी एक दूसरे के साथ लड़ते थे, जाहिर है जंग में तो सारे ही इकट्ठे होके लड़ते हैं ना, वो और ये सारे मिलके लड़ते थे, दूसरी तरफ यहूदी भी थे और बुत परस्त भी थे, तो यहूदी यहूदी के हाथ से भी कत्ल होता था और घरों से भी निकालते थे, दर बदर भी करते थे, जब जंग होती है तो ये भी होता था। तो तदाहरुना अलैहिम बिल इस्मि वल उदवान, तुम चढ़ाई करते हो ऊपर उनके साथ गुनाह के और ज्यादती के, गुनाह और ज्यादती में एक दूसरे के साथ ताबुन करते हो, यानी कत्ल कर रहे हो, घरों से निकाल रहे हो, ये तो तुम्हारे ऊपर गुनाह है, तुमने अल्लाह ताला के हुक्म को तोड़ा है। जबकि आप देखें कि पहले इनसे ही मीसाक लिया गया था कि नहीं, आपने अपने को किसी को कत्ल नहीं करना, आपने किसी को घर से नहीं निकालना, लेकिन जब ये जंग होती है तो फिर तो ये नहीं देखा जाता, तो एक दूसरे के खिलाफ ये सारे काम होते थे। कितने आराम से तुम एक दूसरे के ऊपर जुल्म कर रहे हो, ज्यादतियां कर रहे हो, चढ़ाइयां करते हो एक दूसरे के ऊपर, अब बजाय इसके अपने भाई की मदद करो, तुम उल्टी उनके साथ, उनके आमने सामने आके उनके साथ लड़ाई शुरू करते हो। तो ये इन्होंने भी इस वक्त भी किया था और इससे पहले भी, जब मूसा अलैह सलाम के बाद भी, जब ये 12 कबीले आपको पता है इनके थे, तो ये भी आपस में लड़ते थे और फिर एक दूसरे को मारते भी थे, और इनके अंदर भी एका नहीं था। वह इन यातु को मुसारा, और अगर वो हो जाएं तुम्हारे पास कैदी, तो फादू हूं, तुम फिदिया लेते हो उनसे। यानी फिर अब मैंने आपको क्या बताया, चार बातें थी ना, चार में से तीन तो छोड़ दी और एक वो जो फिदिया लेने वाली बात है वो देने के खड़े हो गए, और अपने यानी कैदी छुड़ाए,
दूसरे के पास कैदी हैं, चाहे वो काफरों के पास, मुशरिकों के पास थे, चाहे दूसरों के पास हो, अपने कैदी छुड़ा रहे हैं। फिर कोई उनसे पूछता कि जो है ना, फिर बताओ कि तुम ये कैदी क्यों छुड़ा रहे हो? तो कहते थे हमारी तौरात में ही लिखा है। तो तौरात में तो ये भी है कि तुमने कत्ल नहीं करना। अब इसको आज की दुनिया के सिनेरियो में देखें तो मुसलमानों के ऊपर, मुसलमान मुल्कों से ही लोग यानी उधर से ही रास्ता पाते हैं हमला करने के लिए, वो अपनी ही सी पोर्ट्स भी देते हैं, वो वहीं से काफरों के ट्रक भी जाते हैं, वहीं से सब कुछ जाता है, और उनकी सप्लाई नहीं बंद करते। और वैसे दुनिया में शोर मचाते रहते हैं कि मुसलमानों के ऊपर कुछ ना किया जाए, और मुसलमानों को ऐसे ना किया जाए, और उनके ऊपर जुल्म ना किया जाए, और फिर उनकी इमदाद करनी हो तो उसके लिए भी ट्रक खड़े में, खुराक के ट्रक खड़े में ले जाने के लिए, और जी बड़ा डोनेशन दे रहे हैं क्योंकि वो वहां पे भूखे मर रहे हैं। लेकिन जब मारने का वक्त आता है तो फिर तुम दूसरों के साथ खड़े हो जाते, फिर तुम्हारी तरफ से सप्लाई भी जा रही है, फिर तुम जगह भी अपनी दे रहे हो, फिर अपनी एयर स्पेस भी दे रहे हो, फिर तुम हर चीज उनको मुहैया की हुई है। तो एक तरफ तुम उनके कत्ल के लिए उसके अंदर साथ हो, दूसरी तरफ तुम डोनेशन भी देते हो कि जो है ना वो भूखे मर रहे हैं। तो ये क्या चीज है? तुम्हें तो पहले ही कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो कहा है कि मुसलमान जो है वो मुसलमान का खून नहीं कर सकता। मोमिन मोमिन का भाई है, ना खून करता है, ना किसी के सुपुर्द उसको करता है, और ना ही उसको रुस्वा करता है। फिर भी मुसलमानों को कहा गया कि जिस्म की तरह हो, जिस्म का एक हिस्से को तकलीफ होती तो सारा जिस्म तड़पता है। अब क्या होता है आज मुसलमान मुसलमान के लिए ऐसे ही है बिल्कुल, ये आईना ऐसा दिखाएगा। ये आयतें जब मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रही थी तो मेरे दिल को इतनी तकलीफ हो रही थी कि आज हम बिल्कुल वही चीज कर रहे हैं जो यहूदी करते थे। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। वाकई बालिश्त व बालिश्त, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई की है उसी तरह चल रहे हैं। इतनी तकलीफ दे हैं ये बातें, क्योंकि साफ लिखा हुआ हर चीज का, और फिर वही हम करने के लिए खड़े हो जाते। और दुनिया में आज वही हमारे आज रवैये हैं, उसी किस्म के हमारे काम हैं। और सिर्फ मुल्कों की सतह को छोड़ दें, जब हम मुल्कों को पॉइंट आउट करते हैं ना, तो उसके बाद फिर हम अपने आप को भूल जाते हैं। जो जिस सतह पे है वो यही कर रहा है, जिसका मुल्कों के ऊपर चलती है वो वहां पे कर रहा है, जिसकी अपनी जाती सतह पे है वो वहां पे कर रहा है। और फिर माली इमदाद देते हैं फिर उनको ही, उन्हीं मुसलमानों के लिए, उन्हीं का इलाज करने के लिए, उन्हीं को भूख से उसके लिए, लेकिन बाकी सारा कुछ कर रहे हैं जो दूसरे काफिर कहें उनके कहने के ऊपर सब कुछ कर रहे हैं। तो तुम क्या कर रहे हो? जबकि वहुआ मुहर्रम अलैकुम इखराजुहुम, हालांकि तुम्हारे पर तो हराम किया गया था पहले इनको निकालना ही, इनको तुमने घरों से दरबदर किया, यही तुम्हारे ऊपर मना था और तुमने वही किया। ये है अल्लाह ताला के दीन के साथ भी एक खेल करना। एक तरफ कुछ कर रहे हो, एक तरफ कुछ कर रहे हो, यानी जिसका जो दिल चाहता है वो जितना उसको है फिदिया देने के लिए, बड़ा नेकी का काम है। हम अपने भाइयों को छुड़ा रहे हैं, देखो तो पहले जो कत्ल कर रहे थे, पहले जो उनको तुमने घरों से निकाला, पहले जो उनके साथ तुमने जंग की, अब वो कैद तो होने थे। अफतुमिनुना बिबादिल किताबी वतकफुरुना बिबाद, ये इस चीज को आप हाईलाइट कर लें कि ये एक जिसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, वो आ गया। अब तुम क्या बाज हिस्सा किताब का उसको फॉलो करते हो और बाज का इनकार कर देते हो? यानी आपको बताया ना मैंने कि चार बातें कही गई थी, उन चार में से क्या किया तुमने? तुमने तीन छोड़ दी और एक को पर अमल कर दी, यानी जो अपने आप को सही लगती थी, जो अपनी कन्वीनियंस की थी, जो अपने आपको सूट करती थी, उसको तो ले लिया और बाकी सारी को छोड़ दिया, उसका इनकार कर दिया, जैसे कि वो है ही नहीं। अब आप बताएं क्या ये दीन का मजाक करना नहीं है? अब इसकी सजा क्या है? फमा जजाउ मन यफअलु ज़ालिका, तो नहीं जजा होगी इसकी जो कोई भी ऐसा करेगा, मिनकुम तुम में से, इल्ला मगर, एक ही चीज़ है उसकी सजा, खिज़्युन फिल हयाति दुनिया, तुम शायद दुनिया के फायदे लेने के लिए कर रहे हो लेकिन उल्टा क्या मिलेगा? रुसवाई, जलील हो जाओगे दुनिया की जिंदगी में। वो यौम अल कियामती, और कियामत के दिन भी आराम नहीं है। युरदूना इला शदिल अजाब, वो लौटाए जाएंगे शदीद तरीन अजाब की तरफ। वह मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, ये ना समझना अल्लाह को पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। तो क्या समझ आई इससे आपको, किस चीज की सजा है ये इतनी शदीद के दुनिया की भी रुसवाई, दुनिया में कहीं पे तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी, और आखरत में तो शदीद तरीन अजाब, अशद अल अजाब, शदीद तरीन अजाब। अल्लाह अकबर। अब मुझे बताएं वजह क्या है, आप उस वजह को देखें वो क्या है। अफतुमीनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद, ये है वजह। क्योंकि जब कोई ये करता है तो क्या होता है, असल में वो दीन के हिस्से बखरे कर रहा है, दीन को उसने उसको डायसेक्ट किया और फिर रख लिया, ये है चीजें जिस पे मैं अमल कर सकती हूँ और ये चीजें हैं जो मेरी मर्जी की बातें नहीं है, इसको छोड़ो। यानी इस इस्लाम को टोटली नहीं लेते, हालांकि इस्लाम क्या है, एक पूरा पैकेज है। अब ऐसे नहीं आप कर सकते कि उस पैकेज में से आप देखें चूज करें कि मैंने ये करना है, टिक मार्क, और बाकी क्रॉस आउट कर दी, ये नहीं नहीं ये नहीं मैं कर सकती। पिक एंड चूज नहीं है ये, कोई बफे नहीं है जिसमें आपने अपनी मुताबिक की डिश डाल दी जो आपको पसंद है और बाकी छोड़ दिया। हम हर एक ने अपने अपने कुछ बनाए हुए हैं। कुछ लोग समझते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करके ही बस फिर सत्ते खैरा है, फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी कर लो उसके बाद कुछ नहीं होगा, कोई मसला नहीं है, उनसे मोहब्बत है हमें और उसमें शेर क्या लिए, नातों से झूम झूम जा रहे हैं और बस काफी है इतना। किसी ने सोचा बस वालदेन की खिदमत कर ली, देखो ये कितना बड़ा मैंने दीन का काम किया। आपको नहीं पता हकूकुल इबाद सबसे बड़ी चीज है, अल्लाह ताला ने वो नहीं माफ करने हकूकुल इबाद, बाकी सब कुछ माफ कर देना है, लिहाजा मैं हकूकुल इबाद ही कर रही हूँ, बस वही करती जा रही हूँ। छोड़ो नमाज किधर और हिजाब किधर और हलाल कमाई किधर, छोड़ो उसको, वालदेन की जो हम खिदमत कर रहे हैं। किसी ने ये सोच लिया कि नमाज हम पढ़ रहे हैं उसके बाद सूद खाओ, रिश्वत लो, मिलावट करो, जो मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ही सोचता है कि हम देगें चढ़ा देते हैं फलां जगह जाके, इतना इतना डोनेशन हमने मस्जिदों को दिया हुआ है, अब क्या फर्क पड़ता है, हम देखो कितने नेकी के काम करें। हर एक ने अपने लिए कोई ना कोई चीजें रखी हुई है जिनके ऊपर वो मुतमईन है कि मैंने बस इतना कर लिया ना, ये काफी है, दैट्स इट, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। ये है जो आज हम मजाक कर रहे हैं अल्लाह के दीन का। अब हम अपने गिरेबान में देखें, क्या मैं कुरान की तमाम बातों को मानती हूं अमल की बातों में लिखे, या कुछ को मानती हूं जो मुझे कन्वीनियंट लगती है और कुछ को नहीं मानती, उनको ये एक नेकी, देखिए अपने आप को भी तो तसल्ली देनी होती ना इंसान ने, अब उसने अपने आप को कुछ कुछ तो मुसलमान रखना होता है, अब उस जमाने के वो मुसलमान थे, आज के हम मुसलमान हैं, उसने अपने आप को कुछ कुछ मुसलमान रखना होता तो उसके लिए वो अपनी दिल की तसल्ली के लिए कुछ चीजें जरूर करता है, हर एक करता है, अल्लाह से बिल्कुल ही दीन से निकला हुआ हो तो वो अपनी तसल्ली के लिए जरूर ये कर लेते थे, फिदिया देख के देखो हमने कितनी बड़ी चीज की, अपने भाई बंदों को छुड़ा लिया, हमने उनकी खुराक का इंतजाम कर दिया, हमने इतना डोनेशन दे दिया, हमने देखो ऐसे कर दिया, तुम्हें तो पहली चीज ही मना की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम की कड़ियां एक के बाद एक टूटती चली जाएंगी, जब एक कड़ी टूटेगी तो लोग अगली को पकड़ लेंगे, यानी ऊपर से नीचे तक कड़ियां है ना, ऊपर की टूटेगी नीचे आ जाएंगी, नीचे की टूटेगी नीचे आ जाएंगी, हत्ता के छोड़ते छोड़ते सभी छूट जाना है, आखिरी जो कड़ी होगी, जो सबसे पहली कड़ी टूटेगी ना, वो ये है कि अल्लाह के कानून के अलावा कोई और कानून आ जाएगा, उसको कायम करेंगे, और आखिरी कड़ी जो रह जाएगी ना वो है नमाज, और आज तो उस कड़ी में भी दरारें पड़ चुकी हैं, क्योंकि उम्मत कितनी कसरत है उम्मत की जो नमाज से ही गाफिल है, और जो पढ़ते हैं अक्सर आधी पढ़ी आधी छोड़ दी, चार पढ़ी एक छोड़ दी, तीन पढ़ी दो छोड़ दी, बस इस पे है। तो इस्लाम को एज अ होल एज अ पैकेज नहीं लेते, और ये जिल्लत और रुसवाई आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, दुनिया में हम इतने जलील हैं, कोई हम पे ट्रस्ट नहीं करना चाहता। हम आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, हम रुसवा हो चुके हैं। कोई हमारे पासपोर्ट्स देखता है, बैन कर देता है कि ये इनको नहीं आने देना, क्योंकि रुसवाई अल्लाह ताला की तरफ से। जिल्लत आप देखते नहीं, जिल्लत कैसी छाई हुई, वाकई जिल्लत छाई हुई है, और इसको महसूस हम कर रहे हैं। कोई हमारे पासपोर्ट को इज्जत नहीं देता, किसी मुल्क में जाएं वो पूछता नहीं है। ऐसे ही मुल्कों में चले जाएं जो अपने इस्लामी मुल्क हैं, उसमें भी नहीं कोई पूछता दूसरे मुल्कों में क्या होगा। और ये तो होगा जब तुम ये काम करोगे, जब जब ऐसा किया जाएगा कि दीन के हिस्से बखरे करके और अल्लाह के दीन का ऐसे मजाक उड़ा दिया जाए कि जो हमारा दिल करे हम इसके साथ खेल खेलें, हमें पसंद आएगा जो हम वो करेंगे, हमें जो नहीं पसंद आएगा वो हम छोड़ेंगे। और उसके बाद भी दावा हम करते रहें कि हम तो बहुत नेक हैं, हमारे जैसा तो नेकी कोई नहीं। ये बहुत बड़ी खराबी है और इसका नतीजा आप देख लें फिर। ये है वो बीमारी जो हमारे अंदर आ गई है। अब ये क्यों आती है, इसके पीछे क्या चीज है, क्यों तो मीनूना भी बादिल किताब और तकफरूना भी बाद आता है, क्या आप क्या सोचते हैं इसकी क्या वजह होगी? अल्लाह ताला ने बता दिया अगली आयत में वजह, उलाई कल्लदीन अश्तरवुल हयात दुनिया बिल आखिरा, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की जिंदगी खरीद ली आखरत को बेच के। देखिए खरीदो फरोख्त में क्या होता है, कोई चीज आप देते हैं तो दूसरी लेते हैं, आपने पैसे दिए और किसी चीज को तरजीह दी थी तो आपने पैसे दिए ना। मसलन हमने पैसे दिए और मसलन दूध खरीदा, तो आपने दूध को तरजीह दी, पैसे दे दिए, दूध खरीद लिया। इन्होंने आखरत को दे दिया और दुनिया को खरीद लिया, क्योंकि इनके लिए दुनिया तरजीह थी, दुनिया प्रायोरिटी है। अब क्या है, ये है वो वजह जिसकी वजह से तुमीनूना भी बादिल किताब और तकफुरूना भी बाद होता है, कि जब इसको तरजीह दी तो अब जो चीज इसके फायदे की होगी उसको तो करेंगे, जो चीज इसके नुकसान की नजर आएगी उसको छोड़ देंगे। यानी इंसान को जो सूट करता होगा दुनियावी फायदे, दुनिया की मुताबिक जो उसके यानी उसके साथ मेल खाता होगा, जो उसको को सूटेबल लगेगा, जो इसके कुछ ही नुकसान में ना इस हम पड़े, उतना हद तक करेंगे। है ना, कुरान पाक में ही है कि कुछ लोग हैं जो किनारे किनारे रह के अल्लाह की इबादत करते हैं, अब कुछ फायदा नजर आता है बस। पहले भी हमने मुनाफिकों की भी बात पढ़ी थी ना, चल पड़ते हैं जब रोशनी होती है और अंधेरा होता है तो फिर रुक जाते हैं, अभी तो यही करते हैं। तो मिनूना भी बाद और तकफुरूना भी बाद, तो शरीयत में से भी हम सब ने कुछ ना कुछ चीजें फेवरेट निकाली नहीं है और कुछ को बिल्कुल क्रॉस आउट किया है, वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है कि हमने ये करना है कभी, क्योंकि हमारा दिल कह रहा है नहीं करना मैंने। क्यों? क्योंकि हम दुनिया को तरजीह दे बैठे हैं। बाज लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने आखरत को मानते ही नहीं ना, जो आखरत को मानते हैं उनमें भी ऐसे लोग हैं जो के कुछ कुछ ही हैं जो के वाकई आखरत को ऊपर रखते हैं, कि आखरत बननी चाहिए, दुनिया का नुकसान हो भी तो होता रहे। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो आखरत को मानते हैं लेकिन सिर्फ जुबानी जुबानी दावे करते हैं, उनके नजदीक फिर भी दुनिया ऊपर है आखरत नीचे है, दुनिया प्रायोरिटी है आखरत बाद की चीज है। हम ये नहीं कहते कि दुनिया की जिंदगी फालतू है, बेकार है, इसका कोई नहीं, इसको छोड़ दो, नहीं, लेकिन इसको प्रायोरिटी नहीं बना सकते, इसको मकसद नहीं बना सकते, इसको तरजीह नहीं दे सकते कि बस जो यहां पे फायदा है बस वो चीज है सब कुछ और बाकी कुछ नहीं। ये तो वेस्ट का फलसफा है ना, जहां पे आखरत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो आखरत को मानते ही नहीं है, तो वो फिर बस दुनिया के ही बंदे हैं। लेकिन जब मुसलमान भी ऐसे करने लगे कि दुनिया की जिंदगी नंबर वन पे है और आखरत नंबर टू पे है, मिली तो मिली, नहीं मिली तो देखी जाएगी, कोई बात नहीं, और दलील भी कुरान से ले आते हैं, देखो जी रब्बना आतिना फिर दुनिया पहले आता है, तो पहले तो हम दुनिया बनाएंगे उसके बाद देखेंगे आखरत बनती है कि नहीं। और इसी से सारी जिंदगी बदल जाती है इंसान की, कि वो प्रायोरिटी किसको देता है, जो खुद को आखरत के बंदे बनाते हैं वो फिर दुनिया के नफे नुकसान को बाद में रखते हैं, और जो दुनिया के बंदे बनते हैं वो फिर उनको ये नहीं है, जरूरी नहीं कि उनको भी दुनिया सारी मिल जाए। अगर मैं अपने गोल्स दुनिया के सारे बना लूं तो जरूरी तो नहीं है कि मुझे सब मिल जाए, वो भी तकदीर पे है। अल्लाह ताला ने जितना दिनों का बस उतना ही मिलेगा, वो भी सबको तो नहीं मिल जाता, सारे ही भाग रहे हैं आज, क्या सबको सब कुछ मिल गया? नहीं मिलता, तो यकीनी नहीं है कि दुनिया का सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आखरत जरूर तबाह हो जाएगी। दुनिया मिले नहीं मिले वो अल्लाह ताला के ऊपर है कि वो दुनिया किसको देता है, जितनी तकदीर में लिखी है। तो जितने लोग दुनिया के पीछे भाग रहे हैं आखिरत तो उनकी तबाह हो ही गई, दुनिया की भी यकीन नहीं है, कंफर्म नहीं है कि उनको दुनिया भी मिल जाएगी, लेकिन हाँ जो आखिरत के लिए दौड़ लगाता है उसको आखिरत जरूर मिल जाएगी, और दुनिया भी हो सकता है मिल जाए, जो उसकी तकदीर में लिखी होगी वो जरूर मिल जाएगी। तो ये है फॉर्मूला, मगर इसके बावजूद जबकि हम इसके ऊपर ईमान रखते हैं, इसके बावजूद हमने आखरत को पीछे किया हुआ और दुनिया को ही कह रहे हैं आखरत बिगड़े तो बिगड़े, वो बात की बातें हैं, दुनिया ना बिगड़े। वह अम्मा मन तौगा वह आसर अल हयात दुनिया फ इन जहीम ही अल मावा। सूरह नाजियात में आपने पढ़ा कि जो सरकशी करता है और दुनिया की जिंदगी को प्रायोरिटी बनाता है ना, उसका ठिकाना जहीम है। जैसे कि देखें उसने जब सारी चीजों का महवर, अपनी जिंदगी का गोल ये बना लिया मेरा कारोबार अच्छा हो जाए, मेरी दुकान चल जाए, या मेरी जॉब है वो उसके अंदर मेरी तरक्की हो जाए, और इतनी प्रॉपर्टी बना लूं, खुशहाल जिंदगी हो, घर हो, गाड़ी हो, बच्चे अच्छे ओहदों पे हो जाए, बस ये मेरी जिंदगी और यही मेरा गोल है, बस ये करके मर जाऊं मैं कामयाब हूं। तो दीन के लिए जिंदगी लगाना तो कोई मकसद ही नहीं, दीन को सोचना उसके ऊपर, या उसकी कोई फिक्र करना, या उसके ऊपर चलना, या उसको कोई प्रायोरिटी देना, या उसकी सोच रखना, वो कहीं नहीं है, तो फिर रुसवाई होगी और क्या होगा। जबकि दुनिया तो अच्छी गुजरे या मुश्किल में गुजरे, उसने तो थोड़ी सी है गुजर ही जाना है, आखरत ने नहीं गुजरना, वो नहीं गुजरेगी। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्होंने अल्लाह अकबर आखरत बेच दी और दुनिया ले ली, फला युखफ्फफु अन्हुम अल अज़ाब, इनसे अज़ाब हल्का नहीं किया जाएगा। और ये अज़ाब कहाँ होना है, दुनिया में भी हो सकता है और आखरत में तो है ही, ये अज़ाब में ही रहेंगे, आखरत में तो एक घड़ी भी अज़ाब नहीं कम होगा। अल्लाह अकबर, दुनिया में हाँ अज़ाब, कोई आग भी लग जाए तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खत्म हो जाती है, आखरत की नहीं खत्म होनी। कोयले भी जल जल के कभी ठंडे हो सकते हैं, लेकिन जहन्नुम की आग नहीं खत्म होगी। वला हुम युनसरून, और ना वो मदद दिए जाएंगे। हम सोचते हैं ना कि हम मुसलमान हैं, हमारी मदद क्यों नहीं होती, वो काफिर हैं, वो देखो कितने ऐसे डोमिनेंट हो रहे हैं, गालिब हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी क्यों नहीं अल्लाह ताला मदद करता। कैसे मदद हो जबकि तुम्हें कहा उदखुलू फिस सिल्मी काफा, तुम सारे के सारे ईमान वालों, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो, तुम आधे दाखिल होते हो आधा बाहर बाहर रखते हो, पूरा नहीं हमने आना, पूरा कौन आया आखिर, दुनिया भी तो हमने दुनिया में भी तो रहना है। तो मैंने आपको पहले बताया ना, किसने कहा है कि दुनिया में ना रहो, सारे ही दुनिया में ही रहते हैं, मगर किस चीज़ को प्रायोरिटी बना के रहना, थोड़ा थोड़ा आते हैं थोड़ा फिर बाहर, फिर थोड़ा आते हैं फिर बाहर, डरते हैं क्योंकि अल्लाह पे भरोसा नहीं है ना, डरते हैं कि अल्लाह ताला तुमसे ले लेगा कुछ। अल्लाह हु अकबर, किनारे किनारे पे रह के चलते हैं, इधर भी कुछ हो जाए क्योंकि अब क्या करें, दिल को भी तो तसल्ली देनी है कि हाँ आखरत पे ईमान है, इन लोगों का भी ईमान था आखरत के ऊपर, कहते नहीं थे कि हम जहन्नुम में रहेंगे मगर थोड़ा अरसा, तो इसका मतलब जहन्नुम पे भी ईमान था, तो आखरत होगी तो जहन्नुम भी है। अल्लाह हु अकबर, तो जो आधा पैर अंदर रखे और आधा बाहर रखे उसका क्या होगा, कहते ना जो आधा अंदर आधा बाहर, जो दो कश्तियों का सवार है वो डूबता ही है, तो कुछ फायदा नहीं है, ये जो मान भी लिया उसका भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो भी तुमने अपनी कन्वीनियंस का मानना है जिसमें तुम्हारी वाहवाह हो जाए, या जिसमें एक्सेप्टेबिलिटी मिले, या जो तुम्हें सूट करता हो, या जो तुम्हें दुनिया को कोई नुकसान ना पहुंचाता हो, या जिसमें कोई ताना ना सुनना पड़ता हो। ये नहीं है कि अल्लाह ताला को हुक्म क्या है, ये है कि जिसमें लोगों की कितनी अप्रूवल है, ये देख देख के तुम चलते हो। अब चाहे वो हमारे खानदानी रसूम और रिवाज हैं, उनको भी देख देख के हम कहते हैं कि भाई नहीं नहीं ये नहीं हम छोड़ सकते। क्यों? चाहे अल्लाह का हुक्म आ भी गया, नहीं क्या करें फिर खानदान नाराज हो जाए। अच्छा ये मैंने अगर हिजाब ले लिया तो फिर ऐसे हो जाएगा, लोग बातें बनाएंगे, मुझे ये कहेंगे। मुझे ये नहीं है कि अल्लाह ताला हुक्म क्या देता है, चाहे वो मेरा लिबास है, चाहे वो मेरे रस्म व रिवाज हैं, चाहे कोई बिदतें हैं छोड़ना जिनको है, चाहे काम कारोबार में कोई चीजें हैं, वो किसी चीज में भी ले लें, क्या हम यही नहीं करते? हमेशा ये देखते हैं कि इसकी अप्रूवल रेटिंग कितनी है। प्रोग्रामों की अप्रूवल रेटिंग नहीं होती, हमारे दीन में भी अप्रूवल रेटिंग्स हम देख के चलते हैं। जिसकी अप्रूवल रेटिंग जितनी ज्यादा होगी उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, फख्र से बताते हैं हमने इतना काम किया इस मस्जिद के लिए, हम ही इसको खड़े करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है इसमें वाह वाह होगी, लेकिन बाकी कामों में जिसमें कोई वाह वाह ना हो उसमें कितना हम सोचते हैं कि ये मैंने काम किया या ये मुझे करना है। तो हमारा सारा दीन अप्रूवल रेटिंग पे चलता है, और इससे मुतमईन है हम कि करते तो हैं ना आखिर। अल्लाह हू अकबर। बच्चों को मैंने हाफिज बना दिया, मेरा बच्चा तरावी पढ़ाता है, मेरा बच्चा वहां पे जाता है, ये फखरिया बातें हैं, इन चीजों के अंदर है बस। और आगे क्या करना है, दीन और क्या तकाजे करता है, उसकी कोई परवाह नहीं है। अभी आप देखेंगे पिछली आयत ही क्या गुजरी है, पिछले सबक में क्या आयत आयत गुजरी है, क्या क्या अल्लाह ताला ने अहद उनसे लिए थे और हमारे लिए भी वो अहद लिए हैं। लेकिन ना कुलू लिन्नासी हुस्ना के ऊपर कोई तवज्जो है, ना वबिल वालिदैन एहसाना पे कोई तवज्जो है, ना यतीमों मिस्कीनों का कोई ख्याल ऐसा है, ना अकीमुस सलाह का कोई ख्याल है, ना आतु ज़कात को कोई ख्याल है, ना अल्लाह ताला की इबादत सिर्फ करना, वो कितनी सारी उसके साथ रिक्वायरमेंट्स है उसकी कोई चीज़ है। वलकद आतैना मूसल किताब, और अलबत्ता तहकीक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, कौन सी? तौरात। वक़फ़ैना मिन बादिही बिर्रसुल, और उनके बाद बहुत सारे रसूल आए, कौन से रसूल आए? मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ही हारून अलैहिस्सलाम आए, ज़िलकिफ़ल आए, फिर उज़ैर अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, दाऊद, सुलेमान, यहया, ज़करिया, ईसा अलैहिस्सलाम, कितने सारे रसूल आए, यूनुस अलैहिस्सलाम, यसा अलैहिस्सलाम, तो बहुत सारे रसूल आए। वह आतेना ईसा बना मरियम अलबैनात, और आखिर में इनके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम आए। आपको पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, जिनकी आगे नस्ल से ये बनी इसराइल हैं, और इन्हीं में सारे रसूल आए सिवाय एक रसूल के, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। ये अल्लाह ताला का फैसला है। अब उनमें लास्ट में कौन आए? ईसा बिन मरियम। उनको अल्लाह ताला ने रोशन निशानियां दी, यानी मोजज़ात दिए, और आपको पता है कितने सारे मोजज़ात थे, घोड़ी को ठीक करते थे, अंधे को सही करते थे, मुर्दा को अल्लाह के हुक्म से जिंदा करते थे, वो अय्यदना हु भी रूहल कुदस, और उनको रूह कुदस से, रूह कुदस कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम, उनसे तायीद की गई, उनको रूहुल कुदस कहा गया, उनकी तायीद की गई कि जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आके फूंक मारी थी हजरत मरियम के दामन में, तो ईसा अलैहिस्सलाम से हमल ठहरा था, फिर उसके बाद भी वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मदद से उन्होंने कलाम किया था पंगुड़े में, और उसके बाद भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद फरमाई, और जब उनको उठाया गया आसमान पे भी तो भी मदद फरमाई। अफकुल्लमा जाकुम रसूलुन, जब कभी भी तुम्हारे पास कोई रसूल आया, बीमा ला तहवा उन अनफुसुकुम, जो तुम्हारी ख्वाहिशात के खिलाफ था, जो तुम्हारी तुम्हारी यानी चाहत के खिलाफ था, यानी ऐसे रसूल के जो वो पैगाम लेकर आए जो तुम्हें पसंद नहीं था। आप देखें कोई आपको कोई ऐसी तालीम दे, ऐसा हुक्म दे जो आपको पसंद नहीं है, आपकी ख्वाहिश के उलट हो, तो क्या होता है? आपको गुस्सा आ जाता है, क्यों ये क्यों कह दिया, अच्छा नहीं लगता। तो यहां पर ये नहीं था कि एक तरफ दुनिया एक तरफ दीन है, ये नहीं था, एक तरफ दीन और एक तरफ दिल। एक तरफ दिल, मेरा दिल क्या चाहता है। जब ये मुकाबला हुआ कि एक तरफ दीन एक तरफ ख्वाहिश, बीमा लाता हवा अनफुसुकुम, दिल की ख्वाहिश। अब जब नहीं पसंद आता कोई चीज, ऐसी नहीं पसंद आती अल्लाह ताला की तरफ से जो आई है वो नहीं पसंद आती, और उसकी वजह क्या है कि मेरी ख्वाहिशात के रास्ते में ये रुकावट है, तो फिर क्या होता है, फिर इंसान बहाने ही बनाता है, फिर कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस, देखो ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो वैसे, ये वजह है वो वजह है, क्या करें, बड़ी मजबूरी है क्या करें, क्योंकि अपना दिल नहीं चाह रहा होता, दिल नहीं चाह रहा होता। फिर कभी जैसे खवातीन कह देती ना, एक मिसाल से समझे, खवातीन क्या करें, हस्बैंड नहीं मानते, हस्बैंड नहीं मानते, वैसे तो हर ख्वाहिश हम हस्बैंड से मंगवाने का हमें पता है कि किस तरह करना, क्या करें, खानदान में मेरे ससुराल वाले नहीं है करने देते, क्या करें, फिर मजबूरी है, जॉब पे भी तो जाना है, क्या करें, अपनी दिल अपना नहीं मानता, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका, अपने अंदर है जो मसला है और नहीं होता बाहर कुछ। तो फिर तुमने क्या किया, बीमा लाता हुआ अनफुसुकुम इस्तकबर, तुम तकबर करने लगे। तकबर क्या होता है, हक का इनकार और लोगों को हकीर जाना, क्या हक का इनकार करना और लोगों को हकीर जाए, ये हक का इनकार ही है ना, कि जब ये अपने आप की बात इतनी बड़ी समझना कि नबी की बात को बिल्कुल ठुकरा देना कि ये तो नहीं हम मानते, हमें नहीं, हम नहीं इसको सही समझते हैं, हम नहीं इसको मानेंगे, और आगे बात आ रही है वो भी ना मानने की जो बात है, तकब्बुर कैसे वो करते थे। अगर तो अपनी ख्वाहिश की तकमील हो रही है, उससे मैच कर रहा है ना अल्लाह का हुक्म, तब तो मान लिया, और अगर ख्वाहिश के उलट है तो फिर एक तो चीज छोड़नी पड़ेगी, या तो दीन छोड़ेंगे या ख्वाहिश छोड़ेंगे, तो फिर दीन छोड़ देते हैं, हाँ दिल नहीं तोड़ सकते हम अपना। क्योंकि कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, तो दीन ही इतनी फालतू चीज है उसको छोड़ देते हैं, ख्वाहिश को नहीं छोड़ते हैं। तो जब भी नबी वो चीज लेकर आए जिसका इनको दिल नहीं चाहता था, तो इन्होंने सीधा सीधा इनकार कर दिया, तकब्बुर किया, अपने आप की बात को बड़ा समझा। बतरुल हक व गामतुन नास, ये इसकी डेफिनेशन लिख लें, बतरुल हक के हक को इनकार और गामतुन नास लोगों को हकीर समझना। इन्होंने समझा कि नबी की बात को कुछ नहीं समझा, अपने आप की बात को बड़ा समझा और इनकार कर दिया। उन्होंने समझा कि हम इन बातों से भी ऊपर हैं, हमारी अक्ल ज्यादा ऊपर है। फरीकन कज़्ज़बतुम, एक फरीक को तो तुमने झुटला दिया, फरीकन तक्तुलून, और एक फरीक को तुमने तुम कत्ल करते रहे। अब होना तो यहां पर था कि फरीकन कज़्ज़बतुम फरीकन कत्ल तुम, इसके साथ ही मैच होना था, लेकिन तक्तुलून आया, करते रहे तुम यही काम, यानी तुमने इसी कोशिश में लगे रहे, जिनको तो कत्ल कर सके, जकरिया और यहया अलैहिस्सलाम को तो कत्ल भी कर दिया, ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ से तो कत्ल कर दिया ना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन्होंने ऐसा किया था कि ये एक कबीला यहूद का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गया कि हमारे दरमियान कोई फैसला करते हैं, और फिर उनको किले के दीवार के साथ बिठा दिया कि आप यहाँ पे बैठे हैं, अभी आते हैं, ऊपर गए और चक्की का पार्ट लेके उन्होंने सोचा हम ऊपर से फेंकेंगे नीचे कुछ ले जाएंगे, उतना वो हैवी होता है वो जो पत्थर की सेल होती है जो चक्की की होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आपको इतला दे दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन वहां से उठ गए। इसी तरह आपको पता है खैबर में वो यहूदी औरत ने बकरी का गोश्त लेकर आई है और उसके अंदर जहर मिलाया हुआ था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाके पेश किया, और उसकी अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया दस्ती का गोश्त उठाया और खाना शुरू किया, फिर एकदम आपने सहाबा से फरमाया खाने से हाथ उठा लो और यहूदी औरत को बुला के लाओ। जब वो आई तो फरमाया तुमने इस गोश्त में जहर मिलाया, उसने कहा आपको किसने खबर दिया, आपने फरमाया बकरी के इस हाथ ने जो मेरे हाथ में है ना, इस दस्ती ने मुझे खबर दी है, उसने कहा हाँ मैंने मिलाया तो है, तो वो इसलिए मिलाया था कि अगर आप अल्लाह के नबी होंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, और अगर आप नहीं होंगे तो आप फौत हो जाएंगे, और जो सहाबी जिन्होंने खाया था वो फौत हो गए। इस जहर को निकालने के, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शाने से खून निकलवाया था, हिजामा कराया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मरजुल मौत में थे तो फरमाते हैं कि खैबर में वो जो जहर आलूद लुकमा मैंने अपने मुंह में रखा था, उसकी तकलीफ आज भी मुझे महसूस हो रही है, और मुझे ऐसे मालूम हो रहा है जैसे मेरी शहरग इस तकलीफ से कट जाएगी। ये बुखारी में है। इतनी ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हुई थी, और ये उस जहर की वजह से। इतनी दुश्मनी थी इनको, क्या उनको पैगंबर कहते थे, हक का रास्ता ही दिखाते थे ना। लेकिन जब इंसान की ख्वाहिश के खिलाफ हो ना, तो उसको दिल करता है इसको मार ही दें, ना रहेगा कांटा तो फिर हमें भी कोई नहीं होता ना। वही जो मुहावरे हैं कि भाई मतलब है कि इनको रास्ते से हटा दो तो हमें कोई कुछ कहने वाला ही नहीं होगा। यहूद का अंबिया के साथ ऐसा ही रवैया रहा है। और हाँ, तौरात को लेके अपने साथ साथ रखते थे कि ये बड़ी बाबरकत किताब है, ये हमारी अजमत की, हमारी कामयाबी की अलामत है। जैसे आज भी कुरान को तो लेके बैठे हुए हैं, दुल्हन को नीचे से गुजारते हैं कि ये कुरान से बरकत हो जाएगी हमारी बेटी के घर में। इसी तरह यहूद तौरात वो रहनुमाई की किताब नहीं समझते थे कि इसे हम हिदायत ले लेंगे, बस बरकत ही बरकत है जी। अल्लाह अकबर। वकालू कुलूबुना गुल्फ, वो कहते हैं हमारे दिल गिलाफों में है, हमारे दिल तो गिलाफ में है। इसके कई माने हैं असल में। वो गिलाफ में जो कहते थे, ये एक वर्ड अल्लाह ताला ने बयान फरमा के उनकी सारी बात बता दी कि क्या उनका मतलब था गिलाफ में कहने का, कि जो उनके सारे बहाने थे ना कि हम क्यों ये नहीं मानते, क्या वजह है हमारे ना मानने की, वो ये गुल्फ के लफ्ज के अंदर है। नंबर वन वो कहते थे, तीन बातें मैं इसमें आपको बताऊंगी। नंबर वन वो कहते थे, हमारे दिल लिपटे हुए ना, तुम्हारी बात हमें समझ ही नहीं आती, क्या करें। जैसे कुछ लोग कहते हैं कुरान हमें समझ ही नहीं आता, हम क्या करें ना, बस समझ ही नहीं आता, बड़ा ही मुश्किल है, समझ नहीं आते, कुछ बात यहाँ पे की गई होती कुछ वहां पे। वो कहते थे हमारे दिल तो खिलाफों के अंदर, हमें तो समझ ही नहीं आती भाई तुम्हारी बात, इसीलिए हम हिदायत भी चल ही नहीं सकते, या कोई असर नहीं है हमारे दिलों में। नंबर 2, बिल्कुल उलट बात, कि हमारे दिल तो इल्म और हिकमत से इतने भरे हुए हैं, इतने पुर हैं कि ऐ मोहम्मद तुम्हारी बात की तो गुंजाइश है ही नहीं, यानी फेल हैं हम, हमें हमारे हमें सारा कुछ पता है, तुम क्या बात करते हो, हमें सब कुछ पता है, हम मतलब है कि तुम सोचो कि हमें नहीं पता, हमें क्या सिखाएगी ये किताब, हमें तो पहले ही सब आता है। हमारे इब्ने अब्बास फरमाते हैं, वो कहते थे हमारे दिल तो इल्म के मखजन है, यानी खजाने हैं, इल्म के खजाना हमारे पहले ही इल्म और मार्फत से भरे में, लिहाजा इल्म मोहम्मद के लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह अकबर। ऐसे हमारे भी लोग, यही तो मुझे दुख होता है कि हर बात ऐसी है कि जैसे हमारी बातें की जा रही हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि उनकी नहीं बात हो रही, हमारी बातें की जा रही। जैसे बाज लोगों को कहते हैं ना कुरान की तरफ आए, तो वो कहते हैं हम तो पहले ही पढ़े हुए हैं, हमें कुरान पढ़ने की क्या जरूरत है, हमें पहले सब कुछ आता है। यानी वो ये नहीं समझते कि कुरान उनकी कोई रहनुमाई करेगा या कुरान उनको कोई ऐसी बात बताएगा जो उनको पहले नहीं पता। कौन सी ऐसी खास बात है जो कुरान ने हमें बता देनी है, क्योंकि वो कुरान को रहनुमाई के लिए जरूरी समझते ही नहीं, उनको रहनुमाई की जरूरत है ही नहीं, कहते हमें पहले ही सब पता है, इसकी तरफ आने बगैर ही उनको सब पता है। आज तक कुरान नहीं पढ़ा लेकिन सब पता है हमें, कितने दावे होते हैं ना। और शायद हम भी जब कुरान की तरफ नहीं आते तो हम भी यही समझते हैं कि क्या होगा इसके अंदर, पुराने लोगों की पता नहीं बातें ही हैं, ऐसे ही बातें, ये इधर की उधर की, जन्नत जहन्नुम की बातें, बस सारा हमें पहले ही पता है, कौन सा हमें नहीं पता, तो अपने कानों से सुनी हुई बातें हैं। अल्लाह अकबर। तो वो कहते हैं आप ऐसी कौन सी नई बात हमें सिखा देंगे, कभी आपने ये बात सुनी। तो वो कहते थे वकालू कुलूबुना गुल्फ, तो ये इल्म से भरे में हमारे दिल। नंबर 3, इसका गुल्फ का माना क्या, वो कहते थे इसमें कोई माकूलियत की बात ही नहीं है, मतलब कोई लॉजिक नहीं है, हम लॉजिक वाले लोग हैं, देखो जो अक्ल के अंदर बात समाए ना, हम तो उसको मानते हैं भाई,
ये इलॉजिकल बातें हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह, हम नहीं इनको मान सकते। तो इन तीनों बातों को कहा गया, ये डिफरेंट किस्म की वो बातें करते थे ना, इन तीनों बातों को कहा गया, वो कहते हमारे दिल वुल्फ है, गिलाफों में है, यानी महफूज है बिल्कुल। आज इसी आयत को अपने ऊपर जरा थोड़ी देर के लिए रख के देखे, जो मैंने नंबर 3 बात बताई है, पहली भी 2 बातें मैंने आपको बता दी, वो भी सेम है जो हमारे पास है। नंबर 3 बात को भी सुन ले, जो मैंने आपको कहा है कि वो कहते हैं कि इसमें कोई लॉजिक नहीं। आज कभी आपने सुना है लोगों को कहते हुए कि ये तो जमाना लॉजिक का है, ये मौलवियों की बातें, दे डोंट मेक एनी सेंस। वो लॉजिक की बात करो, यानी उनका क्राइटेरिया क्या है हक को मानने का, कुरान की तरफ और कुरान की बात या हदीस की बात, कि डज इट मेक सेंस और डज इट नॉट मेक एनी सेंस, ये उनका क्राइटेरिया। मेक सेंस करेगी तो मानेंगे, अगर हम मेक सेंस नहीं करती तो फिर हम नहीं मानेंगे। यानी तुम्हारी मेक सेंस, तुम्हारी सेंस ही अगर क्राइटेरिया है, और तुम्हारी सेंस ही इतनी बड़ी चीज है कि उसके ऊपर कोई चीज पूरी आती है तो तुमने मानना है, तो फिर तुमने तो अपनी सेंस को ही मानना ना, फिर तुमने कुरान को तो नहीं माना। क्या ये तकब्बुर नहीं है? और तकब्बुर क्या होता है कि मेरी अकल इतनी बड़ी चीज है, और मुझे तो, आप जैसे लोग कहते ना, मुझे तो तुम्हारी बात समझ ही नहीं आती, पता नहीं तुम क्या कह रही हो। इसमें भी क्या तकब्बुर है ना कि अब चलो हम इंसानों को ऐसे कह दें तो ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता किसी की ना बात समझ, मगर अल्लाह की बात को ऐसे करना, रसूल की बातों को ऐसे कहना, मुझे तो नहीं समझ आती ये क्या है। क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा दिमाग ही इतना ऊंचा है कि हमारी अकल में बात अगर नहीं आई और हमारी अकल की सतह के मुताबिक नहीं है, तो फिर हमारे लेवल की वो बात नहीं है, फिर हम नहीं मानते इसको। यही तो कुफर है फिर। मेरी अकल में आएगी ये हदीस तो मैं मानूंगी, अगर मेरी अकल में नहीं आती तो फिर मैं नहीं मानूंगी। दिस ये हदीस डजंट मेक एनी सेंस टू मी, अस्तगफिरुल्लाह, तो मैं फिर नहीं मानती। और वो भी समझते थे ये बड़ी काबिले फखर बात है, और आज भी समझते हैं बड़े इंटेलेक्चुअल होने की निशानी है कि हमें तो हमारे लेवल की नहीं ये बातें हैं, ऐसी मौलवियों की बातें, मुझे तो समझ ही नहीं आती इनकी बातें। अस्तग़फिरुल्लाह, बल्लानाहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, अल्लाह ताला ने फरमाया ये कुफर है, इसको कुफर कहा गया। तो बदबख्तो, लानत है अल्लाह की कि इस कुफर की वजह से जो तुम कर रहे हो, ये कुफर है ये कहना कि हमारे दिल तो भाई गिलाफों के अंदर है। फ़कलील अम्मा युमिनून, कितना थोड़ा है जो ये ईमान लेकर आते हैं, या कितने थोड़े हैं इनमें से जो ईमान लेकर आते हैं, दोनों मानी। तो इसका मतलब है कि दिल पे अगर नसीहत अमल असर नहीं कर रही, और लगता है कि दिल बंद हुआ पड़ा है, मुझे बात ही नहीं समझ आ रही, तो इंसान को फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि ये लानत की कैफियत तो नहीं हो गई। बलरान आला कुलूबिहिम, रान जंग होता है, उनके दिल जंग आलूद हो गए हैं फिर। और इसका इलाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया था, मौत को कसरत से याद करना और कुरान की तिलावत। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह, और जब उनके पास आ गई एक किताब अल्लाह की तरफ से, कौन सी किताब, ये कुरान, यानी पहले उनके पास तौरात आई, इंजील आई, इतने सारे पैगंबर आए, अभी आखिरी नबी और आखिरी किताब आ गई है। आखिरी किताब जब आ गई, मुसद्दिकुन लिमा माअहुम, जो तस्दीक करती है जो उनके पास है, इसका क्या माना है, वेरीफाई करती है उसको जो तौरात में है। माअहुम का मतलब उनके पास जो है, यानी उनके पास तौरात है, तो तौरात की को वेरीफाई करती है। कैसे, नंबर 1 कि कुरान प्लेनली कहता है, क्लियरली कहता है कि तौरात और इंजील अल्लाह ताला का कलाम है, वो अल्लाह की तरफ से आई है, तो उनकी तस्दीक की। नंबर 2, जो बातें उसके अंदर हैं कुरान उनकी तस्दीक कर रहा है, जो अल्लाह ताला की तरफ से आई थी, इन्होंने खुद नहीं शामिल की नहीं, उनको सच कहता है। जैसे आपने पिछली रुकू के अंदर पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने उनसे ये अहद लिया, कुरान ने भी इसको एंडोर्स किया है, इसको मानना है, उनसे अहद लिया गया था, लेकिन कुरान उन्हीं की तायीद कर रहा है ना, इसको बात को वेरीफाई कर रहा है। तो ये नहीं कहता कि वो सारे गलत, अब पहले हमारे तो हाँ ये होता है ना कि एक बंदा है तो दूसरा आ जाता, कहता उसको तो ना मानो, मेरी मानो। अब मैं हूँ, इलेक्शन में सियासतदान खड़े होते हैं, क्या करते हैं, दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं, कहते हैं अब मैं सही हूँ, वो सारा गलत था जो पहले था, उसको वोट ना देना, मुझे देना। तो कुरान ये नहीं कहता,
ये मुझे मानो पीछे सारों को छोड़ो, वो कहता है वो भी अल्लाह की किताबें थी, उनके अंदर जो चीजें सही है कुरान ने उनको मेंशन किया है। कितनी जगह कुरान के अंदर है कि बनी इसराइल के ऊपर ये आया, बनी इसराइल के ऊपर ये हुक्म आया, उनको ये दिया गया हुक्म। ऐसे नहीं कहता वो सारा गलत था। हाँ, जो उन्होंने गलत किया उसके अंदर चीजें ऐड की हैं उनको कहा जाता है कि तहरीफ किया। वकानू मेरे कबलू यस्तफ्तिहूना अल्लदीन कफरू, हालांकि वो इससे पहले फतह की दुआएं करते थे खिलाफ काफरों के। यानी क्या होता था कि जब यस्तफ्तिहूना का एक माना तो यह है कि दुआएं किया करते थे, दुआएं मांगा करते थे। क्यों? इसलिए कि जब यहूदियों का मुकाबला मुशरिकीन से होता था, कभी उनके साथ लड़ाई हो जाती थी, तो उनको कहते थे हमारे पास एक नबी आना है, फिर तुम्हें पता चलेगा। बल्कि आसिम बिन आमर कहते हैं, अंसारी हैं, कि हम बुत परस्त थे मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात के बारे में हम जितने आगाह हो चुके थे आपकी आमद से पहले ही, इतना कोई भी नहीं जानता था। किस तरह? कि जब कभी हमारी लड़ाई होती इनके साथ तो ये आगे से कहते थे कि एक नबी आने वाला है, उसकी खसूसियात बताते थे, उसमें ये सिफात होंगी। इनको हाल हुलिये तक पता थे और तब हमें फतह हासिल होगी। और इनके बताने की वजह से हम अच्छी तरह आगाह हो गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और अजीब मामला है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उन्होंने इनकार कर दिया। और आप देखें इसकी एक मिसाल ये हजरत सफिया जो थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा मोहतरमा, हजरत सफिया खुद बयान करती हैं कि इनके वालिद जो यहूदी सरदार था, तो कहती हैं कि ये और आलिम भी था, यहूदी आलिम की बेटी थी, और एक दूसरा यहूदी जो इनका चचा था। फरमाती हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो मेरे बाप और चचा दोनों आपसे मिलने के लिए गए। बड़ी देर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने बातचीत की, फिर जब घर वापस आए तो मैंने अपने कानों से दोनों की बातें सुनी। चचा ने कहा, क्या ये वाकई वही नबी हैं जिनकी खबरें हमारी किताबों में दी गई हैं? तो वालिद ने कहा, खुदा की कसम हाँ ये वही है। चचा ने कहा, क्या तुम इसका यकीन है तुम्हें? वालिद ने कहा हाँ। चचा ने कहा, फिर क्या इरादा है? वालिद ने कहा, जब तक मेरी जान में जान है मैं इसकी मुखालफत करूंगा और इसकी बात चलने नहीं दूंगा। इब्ने हशाम में ये रिवायत मौजूद है। तो उन्होंने पहचान लिया था, अच्छी तरह पहचानते थे और अच्छी तरह जानते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फलम्मा जाअहुम आरफू, जब उनके पास वो आ गया जिसको उन्होंने पहचान लिया। अब पहले क्या है कि दुआएं मांगते थे, दुआएं भी मांगते थे, और फिर यस्तफ्तिहूना का मतलब ये भी है कि खबर देते थे लोगों को कि वो एक आने वाला है, बस वो उसके आने का टाइम करीब है, फिर देखना जरा हम फाते होंगे, फिर ऐसे होगा, फिर फतह हमें मिलेगी। तो जब वो आ गए मा आरफू, जिसको उन्होंने पहचान लिया, किसको? जा आ गया, कौन आ गया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने पहचान लिया उनको, कफर भी है, उन्होंने इनकार कर दिया। फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, तो लानत है अल्लाह की काफरों के ऊपर। इनको अल्लाह ताला ने यहां पे भी काफिर करार दिया। लानत का माना क्या होता है? अल्लाह ताला की रहमत से दूरी। क्यों? इसलिए कि इन्होंने किसी गलत फहमी की वजह से इनकार नहीं किया, ला इल्मी की वजह से नहीं, मा आराफू, इन्होंने पहचान लिया था, ये अच्छी तरह जानते थे। और कुरान कहता है ये उनको ऐसे पहचानते थे जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। आपको अपना बेटे को पहचानने में कभी भी गलती नहीं लग सकती कि ये पता नहीं मेरा बेटा है भी कि नहीं है, तब भी ये इनकार कर गए। इसलिए इनके ऊपर लानत अल्लाह ताला ने की है। बे समझतरो भी अनफुसहम, कितना बुरा है जिसके बदले इन्होंने अपनी जानों को बेच दिया। किसके बदले बेचा? दुनिया के, दुनिया हासिल करने के लिए कि हमारी सरदारी ना जाए, फिर हमारी हम यहाँ पे जो बड़े बने हुए हैं वो ना खत्म हो, ये उसके पीछे इन्होंने, यानी एक दुनिया का लालच है ना, इसके पीछे अपनी जानें बेच दी। अल्लाह अकबर, जानों को कैसे बेच दिया कि जान दे दी, ये जान अब जाए तो जहन्नुम में जाए, जले, लेकिन दुनिया हमारी बच जाए। बेसमशतरो भी अनफुसहुम अन यकफुरू, के उन्होंने कुफर किया। कैसे बेचा उन्होंने? किस तरह बेचा अपनी जानों को? कि उन्होंने कुफर किया। कुफर करता है जब इंसान, तो अपनी जान को समझ लो बेच देता है, कुछ तो उसके बदले में लेता होगा ना, दुनिया ले लेता। कुफर किस चीज से किया? बीमा अनजल अल्लाह, जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया, ये वही, ये कुरान, बगियन जिद की वजह से, बगी सरकशी को कहते हैं, बगावत भी इसी से है ना, इनको जिद थी कि ये नबी हमारे में से क्यों नहीं आए, बस इन्होंने ये जिद पकड़ ली, हमारे में से आते तो हम मानते, ये तो यानी बनी इसराइल से क्यों नहीं आए, क्योंकि ये अपने आप को चोजन मन समझते थे, आगे आप पढ़ेंगे, ये अपने आप को समझते थे कि हम अल्लाह ताला के बड़े लाडली हैं, हम बहुत बड़ी चीज हैं, इतना तकब्बुर था इनको, और आज तक इनके अंदर तकब्बुर है। ये तो दूसरों को ना नाम ये लेते हैं कि ये तो कुछ नाम स्पेसिफिक रखे हैं, ये वो लोग हैं, और बल्कि एक मैंने इनका सुना भी था बयान कि इनके बड़े ने एक ने कहा कि ये तो जानवर हैं, जानवर, तो ये बाकियों को जानवर समझते हैं, यानी ये ह्यूमन नहीं है, ह्यूमन से लेस है, और असल ह्यूमन हम हैं, इनके अंदर इतनी तकब्बुर है। इसी वजह से आप देखें ना, आप कोई भी यहूदी रिवर्टेड नहीं हो सकता, यानी कोई भी बंदा अगर यहूदी बनना चाहे तो नहीं बन सकता, क्योंकि वो कहते हैं हमारा प्योर ब्लड है, इसके अंदर कोई कैसे आ सकता है। बिमा अंजल अल्लाहु बगियन, तो सख्त जिद थी इनको, इस वजह से कुफर किया, किस चीज के साथ किया, जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया, किस वजह से किया, जिद की वजह से, क्या जिद थी, अय्युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाउ मिन इबादी, कि अल्लाह ताला ने नाजिल किया, अल्लाह ताला ने नाजिल किया, मिन फ़ज़लिही अपने फजल से, अला मन यशाउ ऊपर जिसके उसने चाहा, मिन इबादी अपने बंदों में से, कि अल्लाह ताला ने ये कुरान उसके ऊपर नाजिल किया है जिसको अल्लाह ताला ने चाहा, तो हमारी चाहत से नाजिल होना चाहिए था, जिसको हम चूज करते, यानी नबुवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों मिली, हम यानी फैसला करते, या हमें जिस जो पसंद है उसको मिलती नबुवत, ये क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने फजल से जिसको चाहा, यानी ये अल्लाह ताला का फजल होता है, जिसको चाहे वो चुने। ये मैंने आपको जैसे बताया था ना कि एक बंदे को हमेशा आप इनाम देते रहे, हमेशा देते रहे, हर साल उसको ही इनाम मिलता, जिस साल उसको ना इनाम मिले तो वो कहता है ओ हो, ये जरूरत कैसे हुई कि मुझे नहीं इनाम मिला, या हमेशा उसको ही बड़ा बनाया गया, मिसाल के तौर पे किसी को ग्रुप मॉनिटर बना दिया गया, हमेशा से उसको बनाया जाता है, या हमेशा से उसकी तारीफ की जाती है, अब इस दफा उसको नहीं बनाया, वो कहता है ये क्या, मैं तो छोड़ रहा हूं सब कुछ, ये क्या बात हुई कि मुझे नहीं इस दफा चूज किया गया। उनका भी प्रॉब्लम यही था ना, इतने अरसे से हम में चल रही है नबुवत, कैसे हो सकता है कि अब इनके अंदर कैसे चल गई, ये हजम ही ना हो उनको बात। और देखिए तकब्बुर इंसान को ले डूबता है, ये अपनी बड़ाई का एहसास, मैं कुछ चीज हूं, मैं हूं, ये इसी को तासुब कहते हैं ना, तासुब, प्रेजुडिस होना, और तासुब चाहे नस्ली हो, नस्ल का कि हम बड़ी चीज है, चाहे जुग्राफियाई हो, जोग्राफिकली आपकी कोई ऐसी जगह पे रहते हैं आपको उसका तासुब है, या कौमी हो, नेशनलिज्म, हम यहाँ के नेशनल हैं, इस्लाम ने ये सारे तासुब खत्म कर दिए। देखिए ये होने में कोई हर्ज नहीं है कि जी कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, कोई पठान है, कोई हैदराबादी है, कोई कुछ है, कोई अरबी है, कोई ये, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई ये पहचान के लिए है, कोई पाकिस्तानी को लिया ना, को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई कहना शुरू कर दे ना कोई कौम, अब चाहे अपनी जुबान की बेस पे पंजाबी कहना शुरू हो जाए, या पाकिस्तानी कहना शुरू हो जाए, या इंडियन कहना शुरू हो जाए, या कोई एक इलाके के लोग हैं हैदराबाद के रहने वाले लोग हैं, वो हम समझे कि हम है ये हैदराबादी लोग, इतना कहने में कोई हर्ज नहीं है, जाहिर है एक पहचान है, जैसे आपका नाम एक पहचान है, आपका नाम आयशा है, उसमें क्या फर्क पड़ गया, किसी का फातिमा है अब आपका है अगर, लेकिन जिस दिन आपने ये कहना शुरू कर दिया ना, मैं आयशा, मैं इतनी बड़ी चीज हूं और आप क्या चीज है, बस वो है जो बुरा है, ये है जो तासुब है, जिसको हराम करार दिया गया है, ये है बुरी चीज। आप सरसर ने फरमाया जो तासुब की तरफ बुलाता है वो हम में से नहीं है, हम में से है ही नहीं, तो ये कौमियत को, नेशनलिज्म को उजागर करना, हम ये कौम, हम बड़ी चीज, और इसके ऊपर फूले नहीं समाना, चाहे आप मुंह से ना भी बोले हम बड़ी चीज है, मगर अपने आप को कुछ समझना, ये है तासुब। तो हर किस्म की ऐसी चीज इस्लाम ने मना की है। आपको वो वाकया याद होगा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गजबे में गए हुए थे, तो उस वक्त
एक कुएं के ऊपर मुहाजरीन और अंसार में पानी के ऊपर लड़ाई हो गई। जब लड़ाई हुई तो अंसार के आदमी ने अंसार को पुकारा, ओ अंसारो मेरी मेरी मदद करो, और मुहाजरीन के आदमी ने मुहाजरीन को बुलाया। अब उधर से वो आ गए, उधर से वो आ गए, और अभी करीब था कि गुत्थम गुत्था हो जाते और शदीद लड़ाई शुरू हो जाती, तलवारें निकल जानी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले, आपने फरमाया ये जाहलियत की पुकार, ये जाहलियत की पुकार है, ये यानी ये उस की पुकार है जो जमाने जाहलियत में लोग करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस असबियत को छोड़ दो, ये बदबूदार गली सड़ी चीज है। ये जाहलियत की पुकार क्या है कि हर एक अपने अपने ग्रोह को बड़ा समझने शुरू हो जाए और हम इसके हैं, यानी इंसान ये समझे कि मेरी जो कौम है ना, चाहे वो जुल्म करे, चाहे वो नाइंसाफी करे, चाहे वो हक बोले चाहे ना हक बोले, बस मैं उसके साथ हूं, बस वो ही ग्रेट है, और यहां से मैं हूं तो लिहाजा मैं तो बस पता नहीं क्या चीज है हम लोग, और हमारे जैसे तो कोई है ही नहीं। बस खानदानों में ये होता है, बस जुबान बोलने वालों में ये होता है, वो मुंह से ना भी बोले ना दिमाग में होता है, और उस वजह से वो हर वक्त ही कतरते हमारे अंदर तो ऐसा नहीं होता, ये तो इन लोगों में होता है, ये फलाने ऐसे फलाने ऐसे। हालांकि आप देखें पिछले उसके अंदर या इसमें हमने पढ़ा है ना कि ये जो आया है कि सुम्मा तवल्लई तुम इला कलीलम इनको, ये 83 आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया सारों ने मुंह मोड़ लिया सिवाय चंद एक के, ये नहीं फरमाया सारे ही बुरे, ये सारे बुरे हैं, ये सारे ऐसे हैं, ये भी क्या ना आसान ही था, सबने कर दी, नहीं थोड़े ऐसे भी थे जो ठीक थे। तो एक पेंट ब्रश से कभी हम सबको नहीं पेंट कर सकते कि सारे ये ऐसे हैं, और हम अपनी तो सिफते ही बयान करते रहना, हम तो ऐसे हम तो ऐसे हम तो ऐसे, और दूसरों को रगड़ते रहना कि वो तो ऐसे वो तो ऐसे, इससे मतलब है कि आपके अंदर कहीं कीड़ा है ये दिमाग के अंदर कि हम कुछ ग्रेट चीज हैं, हम कोई चीज हैं और दूसरे ऐसे हैं। कईयों ने लतीफे बनाए हुए हैं इस बारे में, कईयों ने कई चीजें कहते रहते हैं, तो ये चीज तासुब उनको ले डूबा था कि हम इतनी फजीलत वाले, मैं इतनी बड़ी चीज हमारे अंदर आनी चाहिए थी ये नबुवत, और ये क्या बात हुई कि इनको मिल गई है। हालांकि अल्लाह ताला की जिधर चाहे अपना फजल करे, उसको कोई रोकने वाला है, जिसको चाहे जो मर्जी दे, जिसको चाहे उसको ऊपर कर दे, जिसको चाहे नीचे कर दे, जिसको चाहे कबूल कर दे। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह ताला के नजदीक तो सबसे इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है, और तुमने अपने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, तुम कौमों के पीछे पड़े हुए, हमारी कौम सबसे ऊपर, हमारा खानदान सबसे ऊपर, हमारे नेशनैलिटी सबसे ऊपर, हमारी हमारी जुबान बोलने वाले सबसे ग्रेट लोग, तो इसको छोड़ दें, क्योंकि यही चीज यहूद के अंदर थी। अमल की बातों में लिख लें मैंने नहीं आइंदा से ये चीज कहा करनी। फबा उबी गौतबी नला गौतब, इनके ऊपर अल्लाह का गुस्से पे गुस्सा। बास तफसीरों में लिखा हुआ है एक पहला गुस्सा इसलिए था ईसा अलैहि सलाम का इनकार किया, दूसरा इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि सलाम का इनकार किया, ऐसा बात नहीं। बात यह है कि अल्लाह ताला के दो गुस्से की ऐसी ये अलग अलग चीजें नहीं है, अल्लाह ताला का तो गुस्सा ही काफी है असल में, ये इस चीज की ग्रेविटी बताने के लिए कि कितना ज्यादा अल्लाह ताला का गुस्सा इनके ऊपर हुआ, और इस बात की वजह से जो इन्होंने की, ये क्या समझते हैं अल्लाह ताला जो चाहे करे, ये क्या समझते हैं अपने आप को, हमारे हाथ में हमसे पूछा जाए कि किधर अल्लाह ताला नबुवत दे और किधर नहीं दे, हम तो नहीं कभी ऐसे ही इतराज करते अल्लाह ताला ने उसको क्यों ये दे दिया। हाँ चलो अल्लाह ताला का नाम नहीं लेते होंगे, उसको ये चीज क्यों मिल गई, तो अल्लाह ताला का फैसला, उनके यहां बेटे क्यों हो गए, मुझे तो नहीं मिला बेटा, और उनका इतनी प्रमोशन क्यों हो गई, वो इतने ऊपर क्यों चले गए, उन्होंने इतना बड़ा घर क्यों ले लिया, हाय हाय दिल के अंदर इतनी परेशानी, इसी को हसद कहते हैं, और यही हसद उनके अंदर था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद जो है एक दूसरे से हसद ना करो, ये हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती, ये हसद ही है जब दूसरे की नेमत जो है ना वो हजम नहीं हो रही, अब अंदर ही अंदर कूड़न जलन और एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उनसे यही तो हो रहा था।
अब क्या प्रॉब्लम थी जब वो के समझते भी थे, उनको पता भी चल गया था, लेकिन हसद क्यों, इनको क्यों मिला ये फजल इनको क्यों मिल गया? तो कहीं ये हसद तो नहीं है? यही शैतान को भी हुआ था ना, आदम को क्यों सजदा करने का हुक्म कर दिया? शायद वो चाहता होगा मुझे सजदा किया जाए। आदम को क्यों ये प्रायोरिटी मिल गई, उसको क्यों ये इतनी बड़ा मकाम दे दिया गया? हसद इंसान को खत्म कर देता, उसकी नेकियों को खत्म कर देता। तो हसद किसी से भी ना करे, उसको किसने दिया? अल्लाह ताला ने। तो अल्लाह ताला की तकसीम पर नाराज हो रहे हैं हम कि क्यों अल्लाह ताला ने उसको दे दिया, आप उसके ऊपर नहीं, क्योंकि उसको देने वाला तो अल्लाह है ना। अगर चाहे उसके पास माल आया या औलाद आई या उसको घर बार अच्छा मिल गया, ये दुनिया की चीजें हैं ना जिनमें हम हसद करते हैं, या वो उसको बड़ी नेकनामी मिल गई, या वो आगे निकल गया किसी चीज में भी, या उसके बच्चे बड़े लायक निकल आए, या उसकी बड़ी शोहरत हो रही है अच्छी, उसकी कोई बातें की जा रही हैं, अब हसद होता जा रहा है, ये बड़ी आगे निकल रही है। अब उस हसद की वजह से गीबत, चुगली, लोगों में बैठ के उसको बदनाम करना, फिर किसी तरह उसको तकलीफ देने की कोशिश करना, ये सारे उससे फिर आगे गुनाह फूटते हैं हसद से। फिर इंसान हसद अंदर थोड़ी रहता है, फिर कभी उसको ताने सुना देना, क्योंकि हसद जो है अंदर, अब चैन तो आ नहीं रहा, अब किसी ना किसी तरह उसको कोई ना बातें लगाते ही जाना, कहीं लेग पुलिंग करना, कहीं कुछ करना। तो ये हसद उनके अंदर था, हसद हमने अपने अंदर से खत्म करना। जिसके पास कोई नेमत देखे अल्लाह ताला से मांग ले, अल्लाह मुझे भी अता फरमा, तूने उसको दिया ही, अल्लाह तेरे खजानों में कौन सी कमी है, तू मुझे भी दे दे, लेकिन हसद मत करें। फबा ऊ भी गदब इन अल्लाह गदब, तो इसकी वजह से उनके ऊपर गजब के ऊपर गजब अल्लाह ताला का टूटा है, इतना अल्लाह ताला का गुस्सा है इनके ऊपर। हालांकि आपको हैरान होंगे आप इस बात को सुन के कि हालांकि ये तौहीद वाले थे, इनके अंदर वैसे शिर्क नहीं है जैसे कि ईसाइयों के अंदर है। इनका एक फिरका है जो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहता है, लेकिन वैसे सारे नहीं कहते, जैसे ईसाई तो सारे ही कहते हैं ना, फिर भी इनके ऊपर अल्लाह ताला का कितना गुस्सा और लानते हुई हैं। वलिल काफिरीन अज़ाबुन मुहीन, अल्लाह ताला ने इनको काफिर करार दे दिया, फिर से दोबारा यहाँ पे आया काफरों के लिए, और यहाँ पे इनकी बात आ रही, अजाब है जो रुसवा कुन अजाब है, जलील करने वाला अजाब है, हानत वाला, ह्यूमिलेशन वाला अजाब है। तो देखें आखरत में अजाब वो भी है जो कि जलाने का है, और एक रुसवाई का भी है। तुम बड़े बनते थे ना, तो एक बड़ा जो बनता होता है ना, उसको इज्जत बड़ी अपनी प्यारी होती कि मेरी वाह वाह ही रहे, मैं बड़ा ही बनूं, उससे जिल्लत नहीं बर्दाश्त होती, कहता मर जाऊं लेकिन जलील ना हूं। अल्लाह ताला उनको वहां पे जलील करेगा जब सारी मखलूक खड़ी होगी। वह इजा कीला लहुम आमीनू, जब इनसे कहा जाता है ईमान ले आओ, किसके ऊपर, बीमा अनजल अल्लाह, साथ उसके जो अल्लाह ने नाजिल किया, कालू वो कहते हैं, नु मीनू हम ईमान ले, बीमा उनजिला अलैना, हम ईमान लाते हैं या ईमान लाएंगे उसके ऊपर, बीमा उनजिला अलैना, जो हमारे ऊपर नाजिल हुआ बस। और उन पे क्या नाजिल होता, तौरात, हालांकि उसके ऊपर भी कौन सा पूरा ईमान लाते थे, तौरात पे ईमान लाते तो उसमें तो लिखी भी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी, और इंजील में भी है। आप देखें कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया सूरह सफ में, व इज क़ाल ईसा इब्नु मरियम, जब ईसा इब्ने मरियम ने फरमाया या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिकन लिमा बैना यदैया मिनत तौरा, मैं तुम्हारे पास रसूल अल्लाह का बना के लाया आया हूँ, भेजा हुआ, मैं तस्दीक करता हूँ उसकी जो पहले आई तौरात, और उसके बाद वह मुबश्शिरन बि रसूलिन, और मैं बशारत देता हूं तुमको एक रसूल की, याती मिम बाद इस्मुहु अहमद, जो मेरे बाद आएगा उसका इसम अहमद है, उसका नाम अहमद है, यानी उनकी किताबों में नाम भी था, वो ये भी जानते थे कि उनका नाम क्या होगा, एक एक निशानी थी, हाल हुलिया भी था, सिफात भी थी, और क्या चाहिए। इसीलिए तो ये यहां पे मूव हुए थे कि उनको पता था वो यसरब में हिजरत करके आएंगे। तो ऐसा कोई नहीं है कि कहीं उनको कोई जर्रा बराबर भी कंफ्यूजन थी कि हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो कि हाय बेचारों को शायद समझ ही ना आई हो, बहुत ही अच्छी तरह पता था। लेकिन जो ढीठ होके, पता होता भी है ना ढीठ होके, फिर भी अल्लाह ताला की नाफरमानी करता रहता है ना, अपने चाहे तकबर की वजह से, हसद की वजह से, तो फिर वो मुश्किल ही राह पाता है, क्योंकि जो सीखना चाहता है, समझना चाहता है, उसको तो आप राह बता सकते हैं, लेकिन जिसको पता हो और ढीठ बना हो, उसको तो आप ये भी कहेंगे सूरज निकला, उसने क्या ना, मैंने मानना ही नहीं, अब वो ढीठ बना हुआ, आप क्या करेंगे? तो जो जब उनसे कहा जाता है ईमान ले आओ, जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया यानी कुराने पाक पे ईमान ले आओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ले आओ, तो कहते नहीं, जो हमारे पास नाजिल हुआ ना, हमने तो बस उसको माना। वह यकफुरुना बिमा वरा, और जो इसके अलावा है, जो भी इसके अलावा है, बस हमने वो नहीं माना। वहुअल हक, जबकि वो हक के, हालांकि कुरान तो हक के, हक को मानना चाहिए ना। ये ना देखो कि भाई किसके पास क्या चीज है, देखो कि क्या बताया जा रहा है वो हक है कि नहीं। मुसद्दिकन लिमा माहुम, और फिर बात वो आई कि तस्दीक करता है जो उनके पास है, तौरात की तस्दीक करता है, जबकि ऐसा है फिर भी ये नहीं मान रहे। कुल, आप इनसे कह दें, अच्छा अगर तुमने उसी के ऊपर ईमान रखना है और तुम रखते हो ईमान जो तुम्हारे पास नाजिल हुआ, फिर फलीमा तख्तुलून अंबिया अल्लाह मिन कब्ल, फिर तुमने उनको क्यों कत्ल किया जो तुम्हारे पास नबी आए थे? इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम इतने ही ईमान वाले हो, तुम्हारे पास अंबिया आए, तुम कहते जो हमारे पास आया बस हम तो वो मानते, तो फिर नबियों को क्यों कत्ल करते थे? वो तो तुम्हारे पास हक ही लेकर आते थे ना, तुम्हारे में से ही आए थे, फिर तुम्हारी हिस्ट्री ऐसी क्यों है? तो देखें, एक एक उनका जुर्म खोल खोल के बयान कर दिया गया, और हमारे लिए बहुत बड़ी इसके अंदर तनबी है, बहुत बड़ी इसके अंदर सबक की बातें हैं। तो हमारे पास तो कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आना, उलामा को मगर उनके नबियों के वारसों को कत्ल किया जाता है, आज भी उनको धमकियां दी जाती हैं, कोई हक बात बताए तो उसके ऊपर लोग आग बगोला होते हैं, उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो उनको कहा गया, अगर तुम्हारा दावा सच्चा है ना इतना ही, तो फिर बताओ तुमने क्यों कत्ल किया नबियों को? अल्लाह ताला हमें कबूल हक की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا
أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين